नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि प्रभु यीशु स्वर्गदूतों से भी उत्तम है, उसने सारी सृष्टि की है। जी हाँ, और यही कारण है कि प्रभु यीशु को स्वर्गदूतों से भी उत्तम ठहराया है और वह सिद्ध है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ें, हम सब प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एक श्रोता मित्र जो बिहार से हमें लिखते हैं जिनका नाम जितेंद्र है। पिछले 8 वर्षों से वह बिस्तर पर हैं और वह प्रभु के वचन को सुनते हैं और चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब भाई जितेंद्र के लिए और इस अध्ययन के लिए भी प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके पवित्र कदमों के पास आकर आपके वचन का अध्ययन कर सकें। यद्यपि कि हम दूर में हैं, रेडियो के माध्यम से आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई जितेंद्र के लिए, जो आपके वचन को सुनते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, पिछले 8 वर्षों से बीमार अवस्था में है। हम प्रार्थना करते हैं पिताजी कि आप उस पर तरस खाएं, उसकी जो भी शारीरिक दुर्बलताएं हैं आप उसे स्पर्श करें, ईश्वर के नाम से आप उन्हें चंगाई प्रदान करें, ताकि वह स्वस्थ भला चंगा होने पाए, उठकर खड़ा होने पाए और आपकी गवाही देने पाए। उनके परिवार के लोगों को आप आशीष दें। आज हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहन जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, प्रत्येक को आप आशीष दीजिए, अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि आज का अध्ययन हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ इब्रानियों की पत्री उसके 1 अध्याय और उसके 5 पद को निकाल लीजिए। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। यह भजन संहिता 2 उसके पद 7 का संदर्भ है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय में हमने पिसिदिया में दिए गए पौलुस के महान उपदेश को पढ़ा था। उसने भी भजन 2 अध्याय उसके 7 पद को ही अपना मुख्य पद बनाया था। पौलुस के अनुसार यह पद बेतलेहम के बारे में नहीं, पुनः जी उठे प्रभु यीशु के बारे में था। कहने का अर्थ यह है कि केवल प्रभु यीशु ही है जो संसार के पापों के लिए मर गया, और दूसरा कोई नहीं जो हमारे पापों के बदले में मरा। मेरे मित्रों, ऐसा कोई स्वर्गदूत भी नहीं है जो हमारा उद्धार कर पाता। केवल प्रभु यीशु मसीह ही मनुष्य रूप धारण करके मृत्यु दंड को उठा पाया था, क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। उसे अपना लहू बहाना पड़ा, क्योंकि लहू के बिना पापों की क्षमा नहीं है। उसने हमारे लिए वह पाप क्षमा कमाई, वह मृतकों में से जिलाया गया। क्यों? क्योंकि वह पुत्र है और वह मृतकों में पहला उठा है। लिखा है, मैं उसका पिता हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यह दूसरे शाऊल की पुस्तक का संदर्भ है। परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधते समय उससे एक प्रतिज्ञा की थी, दूसरा शाऊल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 12-14 पद में, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। मेरे प्रियो, कुछ लोगों का कहना है कि यह व्यक्ति राजा सुलेमान था, परंतु इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में स्पष्ट कहा जा रहा है कि परमेश्वर ने दाऊद को यह प्रतिज्ञा जब दी थी, तब उसका संकेत प्रभु यीशु की ओर था। इस विषय में कितना भी वाद विवाद हो सब व्यर्थ है, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि यह प्रभु यीशु के विषय में है। वही एकमात्र ऐसा मनुष्य था जिसने इसे पूरा किया है। आइए हम आगे पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। ध्यान दीजिए, यह पद भजन संहिता 97 और पद 7 और व्यवस्था विवरण 32:43 का संदर्भ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत महान है, परंतु हैं वे पुत्र प्रभु यीशु से वे कम हैं। वे उसके स्वर्गदूत हैं, उसके सेवक हैं, वे उसके उपासक हैं, वे उसकी उपासना करते हैं। प्रभु यीशु स्वर्गदूतों की उपासना नहीं करता है। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। मेरे मित्रों, यह पद भजन संहिता 104 उसके 4 का संदर्भ है। स्वर्गदूत प्रभु के हैं, वे उसके सेवक और उसके उपासक हैं। यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इब्रानियों की पत्री का लेखक मेरे विचार में पौलुस पुराने नियम के संदर्भों द्वारा प्रभु यीशु को स्वर्गदूतों से उत्तम बताना चाहता है। आप देख सकते हैं कि इब्रानियों की पत्री के प्रथम 2 अध्याय कैसे महान महत्व के हैं। ये दोनों अध्याय शेष संपूर्ण पत्री का आधार हैं, जिसमें वह आज विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु की सेवा की चर्चा करेगा। ओह, हम जाने कि आज परमेश्वर की दाहिनी ओर एक जीवित मसीह है। वह मुझसे भी अधिक वास्तविक है, क्योंकि एक दिन कोई नहीं जानेगा कि मैं कहाँ हूँ। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, परंतु प्रभु यीशु परमेश्वर की दाहिनी ओर सदा हमारे लिए उपस्थित है। वह आज भी सच्चा और जीवित मसीह है। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि इब्रानियों की पत्री का लेखक प्रभु यीशु को स्वर्गदूतों से उत्तम बताने के लिए पुराने नियम के संदर्भ देता है और कहता है कि परमेश्वर ने उसे अपना पुत्र कहा और कहा कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आदेश है कि वे उसे दंडवत करें। स्वर्गदूत पुराने नियम के युग में यहूदियों के लिए स्वर्गदूतों का महत्व महान था, क्योंकि वे पुराने नियम से भली भांति परिचित थे। उनके विचार में स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़े रहते हैं। उन्होंने परमेश्वर के चुने हुए लोगों के समक्ष स्वर्गदूतों के आने के बारे में पढ़ा था। उनके लिए स्वर्गदूत महत्वपूर्ण प्राणी थे। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि कलीसिया के लिए स्वर्गदूतों की सेवा का प्रबंध नहीं है, इसलिए यदि आपको संदेह हो कि आपने स्वर्गदूत देखा है तो आप डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। आपने स्वर्गदूत नहीं कुछ और देखा है। मेरे मित्रों, बहुत समय बाद दो दोस्त कहीं मिले। एक ने दूसरे से पूछा, तेरी शादी हो गई? उसने कहा, हाँ हो गई। तब पहले मित्र ने फिर पूछा, तेरी पत्नी कैसी है? उसने कहा, स्वर्गदूत के समान सुंदर है। पहला मित्र बोला, तू बड़ा किस्मत वाला है, मेरी पत्नी अभी जीवित है। मेरे प्रियो, आप समझ गए होंगे कि उसके कहने का अर्थ क्या है। उसके कहने का मतलब यह है कि उसकी पत्नी मर गई है और दूसरे की पत्नी जीवित है। मेरे प्रियो, मनुष्य स्वर्गदूत नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत में देखी और अनदेखी वस्तुएं बनाई हैं। उदाहरण के लिए, आप अणु को देख नहीं सकते जबकि वह एक भौतिक वस्तु है। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय के 16 पद में पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु ने देखी और अनदेखी वस्तुएं बनाई हैं। परमेश्वर ने मनुष्य से उत्तम जीव भी बनाए हैं जिनमें बुद्धि है। हम एक ऐसे जगत में रहते हैं जिसके लिए यूहन्ना 14 अध्याय उसके 2 पद में प्रभु यीशु ने कहा था, मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं। ये सृजित प्राणी उन मकानों में रहते हैं। परमेश्वर ने इस जगत में बहुत कुछ बनाया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मनुष्य का विकास जानवरों से नहीं हुआ है जैसा कि लोग सोचते हैं। यहाँ भौतिक संसार है, यहाँ प्राणी जगत है। कुछ जीव मनुष्य के नीचे हैं, तो कुछ जीव मनुष्य के ऊपर हैं। हम ना तो जानवरों से विकसित हुए हैं और न ही हम कभी स्वर्गदूतों में विकसित होंगे। हमें कई बार संडे स्कूल में एक गीत सिखाया जाता था जिसका सारांश है, मैं स्वर्ग बनाकर स्वर्गदूतों के साथ गाना चाहता हूँ। मैं स्वर्गदूत बनना नहीं चाहता था और मैं इस पद के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। हम कभी स्वर्गदूत नहीं बन सकते। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत का अर्थ है दिव्य संदेश वाहक। इन अलौकिक प्राणियों में भी अलग अलग दर्जे हैं। धर्मशास्त्र से यह प्रकट है, यदि हम विचार करें कि स्वर्गदूत कितने हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उन्हें स्वर्ग की सेना भी कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि वे असंख्य हैं। वे न तो बढ़ते हैं और न ही घटते हैं। परमेश्वर की योजना में उनका एक मुख्य स्थान है, परंतु प्रभु यीशु स्वर्गदूतों से उत्तम है। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 8 और 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। ये पद भजन संहिता 45 और उसके 6 और 7 पद के संदर्भ हैं। यह भजन एक महान मसीह भजन है जिसमें मसीह की आशा व्यक्त है। यह भजन व्यक्त करता है कि दाऊद के वंश में धार्मिकता का राज करने वाला एक शासक आएगा। दाऊद भविष्य के इस प्रतिज्ञा से ऐसा प्रसन्न था कि उसने कहा, भजन संहिता 45 उसके 1 पद में, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। दाऊद कहता है कि वह लिखने की अपेक्षा सुनाएगा तो और भी अधिक अच्छा लगेगा। इब्रानियों की पत्री के लेखक के अनुसार यह आने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वह धार्मिकता का राज्य स्थापित करेगा। परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को राज करने का अधिकार नहीं दिया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं लिखा है, तूने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा। यह एक महान बात है। आप कल्पना कीजिए कि इस पृथ्वी पर एक ऐसा शासक होगा जो धार्मिकता से प्रेम रखता है और अधर्म से बैर रखता है। और तब हम आगे पढ़ते हैं, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन। यह पिता परमेश्वर है जो पुत्र परमेश्वर को परमेश्वर कह रहा है। क्या आप इनकार करेंगे कि प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर है? यदि आप इनकार करें तो मैं कहता हूं कि आप परमेश्वर की बात काट रहे हैं। परमेश्वर तो स्वयं प्रभु यीशु को परमेश्वर कहता है। आप उसे क्या कहते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपके बारे में तो कुछ भी नहीं जानता, परंतु मैं उसको परमेश्वर कहता हूं क्योंकि वह देहधारी परमेश्वर है। वह स्वर्गदूतों से उत्तम है क्योंकि जगत पर राज वही करेगा। वह मसीह है। वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वह एक दिन इस पृथ्वी पर राज करेगा। इब्रानियों की पत्री एक अध्याय उसके 10 से 12 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे। पर तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत न होगा। मेरे प्रियो, ये पद भजन संहिता 102 उसके 25 से 27 के संदर्भ हैं। ये पद हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु सृजनहार है। यहाँ हमें अद्भुत तुलना दिखाई गई है। स्वर्गदूत सृजित प्राणी है, वह रचा गया है, और प्रभु यीशु सृजनहार है, अर्थात सृष्टि करता है। इब्रानियों की पत्री एक अध्याय उसके 13 पद में हम सब आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। यह पद भी भजन संहिता 110 उसके एक पद का संदर्भ है। यह भजन नए नियम में सब भजनों से अधिक आया है। यह भजन प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की शिक्षा देता है। भजनों में प्रभु यीशु का प्रकाशन सुसमाचार वृत्तांतों से अधिक है। हम इब्रानियों की पत्री एक अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, जो इस अध्याय का अंतिम पद है। लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। मेरे मित्रों, अब आप कहेंगे कि यहाँ तो लिखा है कि स्वर्गदूत वे आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने को भेजी जाती हैं। यह उस समय की बात है जब परमेश्वर फिर से इसराइल और अन्य जातियों की सुधि लेगा, कलीसिया के उठाए जाने के बाद। ध्यान दें, यह पद नहीं कहता है कि ये सेवा करने वाली आत्माएं अभी भेजी जा रही हैं कि उद्धार पाने वालों की सेवा करें। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार काम करता है, और उसके पास हर एक कार्य के पीछे उसका उद्देश्य छिपा होता है। प्रभु यीशु पुत्र है और स्वर्गदूत सेवक हैं। प्रभु यीशु राजा है और स्वर्गदूत प्रजा हैं। प्रभु यीशु सृजनहार है और स्वर्गदूत सृष्टि हैं, रचना है। इस समय प्रभु यीशु रुका है कि उसके बैरे उसके पांव की चौकी बनाए जाएं। पिता परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को यह प्रतिज्ञा नहीं दी है। वह कहता है कि उसका पुत्र एक दिन राज करेगा। यह महान धर्मशास्त्र हमारे सामने प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को और उसके बड़कपन को प्रकट करता है। वह स्वर्गदूतों से उत्तम है। मेरे मित्रों, कई बार हम इस दुविधा में पड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया, इसलिए वह स्वर्गदूतों से छोटा है। जी नहीं, इब्रानियों की पत्री हमें स्पष्ट बताती है कि प्रभु यीशु स्वर्गदूतों से उत्तम है। वह सृष्टि करता है और स्वर्गदूत सृष्टि है, अर्थात रचना है। जिस प्रकार हम मनुष्यों को बनाया गया है, उसी प्रकार स्वर्गदूतों को भी बनाया गया है, और इसलिए बनाया गया है ताकि उसके राज्य में उद्धार पाए हुए लोगों की वे सेवा टहल किया करें। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रभु यीशु राज्य करेगा। आज मुझे और आपको भी इस बात को सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि मेरा राजा कौन है। कई बार हम इस संसार में रहते हुए उन कार्यों को करते हैं, उन लोगों को चुन लेते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन के राजा नहीं हो सकते और नहीं है। कई बार हमारे जवान भाई बहन इस संसार के उन बड़े स्टारों को अपने जीवन का राजा बना बैठते हैं और उन कार्यों को करते हैं जो उनके जीवन के लिए कोई भी लाभकारी नहीं होता है। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको चयन करना है कि हम अपने जीवन का राजा किसे चुनते हैं। प्रभु यीशु कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वह चाहता है कि हम उसके पास आए, क्योंकि वह मुझे और आपको शांति देना चाहता है, आनंद देना चाहता है, हमारे उन पापों से मुझे और आपको छुड़ाना चाहता है। क्या आज आप उसे अपने जीवन का राजा बनाने के लिए तैयार हैं? यह प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज आप निर्णय लें कि आप किसे अपने जीवन का राजा बनाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु इस पर आप अवश्य ही विचार करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
नाम खुदा का लेता रहूंगा, नाम खुदा का लेता रहूंगा, देखूंगा सिजदे का अंजाम, होगी हिफाजत दुश्मनों से, ऐसा पाक है यीशु का नाम, ऐसा पाक है यीशु का नाम। नाम खुदा का लेता रहूंगा, देखूंगा सिजदे का अंजाम, होगी हिफाजत दुश्मनों से, ऐसा पाक है यीशु का नाम, ऐसा पाक है यीशु का नाम। मौत की लहरों ने मेरे चारों डाला था घेरा, शैतानों ने दिल में मेरे भरा था डर का अंधेरा, मौत की लहरों ने मेरे चारों डाला था घेरा, शैतानों ने दिल में मेरे भरा था डर का अंधेरा, यीशु ने जब